चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 19 है। अनियतु, नियत के मसाइल। नियत क्या होती है पहले इसको समझेंगे तो फिर इसके मसाइल समझेंगे। नियत का रूट है नून वाव या नवा। नवा कहते हैं गुठली को, आम की गुठली देखी होगी आपने, जैसी गुठली होगी वैसा ही आम उगेगा। अपनी जुबान में आप कह ले कि एक बीज, जैसा बीज होता है ना वैसी ही फसल तैयार होती है। तो नियत, नवा, गुठली, ये सब क्या है कि जैसी नियत होगी वैसा अमल होगा, ठीक है। और नियत क्या है, दिल का अमल है। अनियतु अमलुल कल्ब, दिल का अमल है। जब इसको जुबान पे रखा जाता है ना या जुबान पे ले आए जाते हैं लफ्ज़, तो वो कौल बन जाता है। तो लिहाजा नियत के बारे में ये बात समझ लें। और यही मौजू, यही चैप्टर हर किताब के शुरू में इसके आता है, तो आप हर एक जगह इस चीज़ को फील करेंगे कि असल चीज़ नियत है। छोटी सी मिसाल दूंगी कि तहारत के मौजू पे नियत की बात कहाँ से आ गई। गुसले जनाबत के अगर फ़राइज़ देखें ना कि वो क्या हैं, कि जिसके बगैर गुसल नहीं होता, तो वो दो ही हैं, एक नियत और दूसरा सर से पांव तक पानी बहाना। अब वो मौत तरीका छोड़ दें उसका, वो जब आएगी बात होगी। यहाँ सिर्फ लफ्ज़ नियत पे गौर करें कि नियत नहीं होगी तो आप सारा वक्त भी गुसल करते रहे आप पाक नहीं होंगे, जब तक आपको खुद ना पता होगा कि मैं ये नियत गुसल कर रही हूँ। तो लिहाजा नियत की बात पढ़ना यहाँ लाजमी है। और हम देखेंगे कि इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। पहला मसला है आमाल के अजर व सवाब का दारो मदार नियत पर है। अन उमर अब्नि खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحيدہ سے دیکھیں گھر سے سنیں وحیدہ کو اگر کر سکتے ہیں دوسرے کے گھر سے پھر سنیں يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري। ये क्यों ज़रूरी है आपको अरबी पढ़ाना? इसलिए कि जब आप कल ये बात कहीं कोट करें तो आपको हदीस के अल्फाज सही तरह से आते हों, ठीक है। अब आपने इस हदीस को अपनी तजवीद क्लास में भी और दो तीन बार दोहराना है, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये पहली हदीस ऐसी है कि आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कई जगह आपके काम आएगी। अपने ग्रुप्स में भी थोड़ा सा इसको दोहरा लिया करें, और घर जाके अगर ऊंची आवाज़ से सिर्फ तीन तीन बार हर हदीस को आप पढ़ लें अरबी में, तो एक तो फ़ायदा होगा कि आपको समझना आसान लगेगा। जैसे कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जमा होता है, ऐसे हदीसों का भी होता है, और बहुत थोड़ा फ़र्क होता है इनके अल्फाज के अंदर। फिर दूसरा एक और आपको फ़ायदा होगा कि आपको अल्लाह के नबी सल्लम की वो दुआ लग जाएगी जो आपने हदीस के पढ़ने और याद करने और उसको वैसे बयान करने वाले को दी थी, और वो क्या थी कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को हरा भरा रखे, तरोताज़ा रखे, फ्रेश लुकिंग हो जाएंगे आप। अब तो पढ़ेंगे ना, हाँ। चलिए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिस किसने नियत की। लिहाजा जिस शख्स ने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की, इसे दुनिया मिलेगी, और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की, इसे औरत ही मिलेगी। बस मुहाजिर की हिजरत का सिला वही है जिसके लिए उसने हिजरत की। ये सही बुखारी की रिवायत है। बहुत ही प्यारी बात है ना, कि जो नियत रखेंगे ना वही मिलेगा। हत्ता कि आप देखें कि आप नमाज जैसा काम भी कर रहे हैं जो बेहतरीन काम है, और उसके नतीजे में भी आपको वही मिलेगा जो आपकी नियत होगी। कुरान पाक में आते फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, हलाकत है नमाजियों के लिए। ये क्या बात हुई, नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है। हाँ, कौन? अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में गफलत करते थे, यानी पढ़ते तो थे नमाज, जहन कहीं और ही होता था। तो लिहाजा अपनी नियतों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नियत के फ़र्क के साथ आप देखें कि इंसान की नेकी बदी में शामिल, बदी का शिकार हो जाती है। कोई भी काम करने लगे एक लम्हे के लिए नियत देखें। और हमारे असलाफ कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जिस काम पे हुई वो अपनी नियत को दुरुस्त रखने में हुई, इसलिए कि जब कोई काम शुरू किया जाता है ना तो नियत दुरुस्त होती है, फिर कुछ अरसे के बाद नियत बदलने लगती है। हत्ता कि कुरान पाक पढ़ने का जो अमल है, जो सीखने का अमल है, आगाज़ में इंसान कुछ और नियत रखता है, लेकिन बाद में फिर वो छोटे छोटे मसलों का शिकार हो जाता है। मेरे नंबर क्यों कटे, मुझे ये क्यों कहा गया, मेरी ये बात क्यों नहीं सुनी, और होते होते वो जो एक नियत थी ना वो बदल के ज़ातियात पे आने लगता है। बस वह लोग अल्लाह का दीन समझ के काम शुरू करते हैं, कुछ अरसे के बाद वो उनके गिरोह का या उनके मसलक या उनकी जमात, उनके इदारे का काम बन चुका होता है। तो हर लम्हे इसको चेक करें। मुझे ऐसे लगता है नियत के लफ्ज़ पे जब मैं भी गौर करूँ ना तो मेरे जहन में एक आइडिया आता है, या एक जिसको कहते हैं ना कि तस्वुर उभरता है। वो क्या है, जब आप ड्राइविंग करते हैं ना, जो लोग भी करते हैं उनको अंदाज़ा होगा, तो गाड़ी को सीध में रखना होता है। आपका जो स्टेयरिंग है ना, ज़रा से आप उसको हाथ से हिलाएं तो वो इधर का उधर जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि स्टेयरिंग जो है ना वो हमारी नियत है। स्टेयरिंग के ऊपर आपका फुल होल्ड हो, एक हाथ इधर है एक उधर है, आपकी गाड़ी सीधी जाती रहेगी। और आप ज़रा गफलत में उसके ऊपर अपनी गिरफ्त ढीली करें तो आप देखेंगे कि फिर आपका बिल्कुल हाथ ही हिल जाएगा। तो लिहाजा इसको चेक करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अन अबी हुरैरा
अबी हुरैरा
रदी अल्लाहु अन्हु
रदी अल्लाहु अन्हु
काला काला
काला
रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इन्ना
इन्ना
अव्वलन नासी
अव्वलन नासी
युक्दा
युक्दा
अलैहि
अलैहि
यौमल कियामती
यौमल कियामती
रजुलुस्तुशहिदा
रजुलुस्तुशहिदा
फातिया बिही
फातिया बिही
फअर्रफहु
फअर्रफहु
नेमतहु
नेमतहु
फअरफहा
फअरफहा
फकाला
फकाला
मा अमिलता फीहा कला
मा अमिलता फीहा कला
कातलतु
कातलतु
फीका
फीका
हत्ता स्तुशहिदत
हत्ता
कला
قال
كذبت ولكنك
ولكنك
قاتلت
قاتلت
لأن يقال
لأن يقال
جريء
جريء
فقد قيل
فقد قيل
ثم أمر سوري
ثم
ثم
أمر
سوري ثم
ثم
أمر به
أمر به
فصحب
فصحب
على وجهه
على وجهه
حتى
حتى
ألقي في النار
ألقي في النار
ورجل
ورجل
تعلم العلم
تعلم العلم
وعلمه
وعلمه
وقرأ القرآن
وقرأ القرآن
فأتي به
فأتي به
فعرفه
فعرفه
نعمه
نعمه
فعرفه قال
قال
فما عملت فيها
فما عملت فيها
قال
قال
تعلمت العلم
تعلمت العلم
وعلمته
علمته
وقرأت
وقرأت
فيك القرآن
فيك القرآن
قال
قال
كذبت
كذبت
ولكنك
ولكنك
تعلمت العلم
تعلمت العلم
ليقال
ليقال
عالم
عالم
وقرأت القرآن
وقرأت القرآن
ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا نے تجھے بہادر کہا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ عالم ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا، ورز کرے گا میں نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا تو نے تو قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا، پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کے بعد ایک اور آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا میری نعمتیں پا کر تم نے کیا کام کیے، وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں ان جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھ کو پسند تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہا، پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اسے مسلم نے روایت کیا. کتنا ڈرانے والی روایت ہے، ہر انسان اپنے آپ کو چیک کر لے اس سے پہلے کہ اس کا قدم کسی ایسی جگہ پہ پڑ جائے کہ جہاں سے وہ پلٹ کے نہ آ سکے، اس لیے ہر بندہ نیکی کا کام کرتے ہوئے سوچے کہ کیا واقعی جو کام میں کر رہی ہوں وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا. اس ایک حدیث سے کتنی ہی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، تبھی تو قیامت کے دن ہونے والی باتیں آپ کو دنیا میں بتا دی گئیں. دوسری بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن سوال جواب ہوں گے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا، ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے اس کا سوال قیامت کے دن ہوگا. پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ انفرادی طور پر ہوگا، فرد بائی فرد، یعنی ایک انسان سے انسان، انڈیویجول لیول پہ امتحان ہوگا. ہم جو سوچتے ہیں نا ہم کسی کونے کھدرے میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، हाँ, इंसानों में तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको पता चलेगा जिसकी नज़र इंसान के दिल के ऊपर है। इसलिए हर इंसान अभी से अपने आप को चेक कर ले। बस जब हम लोगों की नज़रों में सच्चे हो जाते हैं, लोग हमारे उज़र कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन वो ज़ात जो दिलों को जानती है वो जान सकती है कि इसका उज़र किस हद तक सच्चा था। फिर अगली बात पता चलती है कि बज़ाहिर दुनिया में बड़े नेक काम करने वाले भी सवाल जवाब से मुस्तस्ना ना होंगे। इस हदीस में तीन लोगों का तذکرہ शहीद। आज हमारे यहाँ जो ही लफ्ज़ शहीद बोला जाता है, ना सिर्फ लोग ये सोचने लगते हैं कि ये खुद जन्नत में चला गया, बल्कि कहते हैं अपने साथ 70 औरों को भी ले जाएगा। सच है, लेकिन शहीद का भी सवाल जवाब हो रहा है इधर, तो इससे क़यामत के दिन की सख्तियों का भी इंसान को यकीन आता है। फिर दूसरी बात इससे ये पता चलती है कि एक इंसान जो दुनिया में झूठ बोलता था ना, वहाँ भी झूठ बोलेगा। दुनिया में नीयत कुछ और थी, करके कुछ और दिखाया। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भी कहेगा, हाँ अल्लाह ताला इसलिए किया कि तेरे रास्ते में लड़ूं और जिहाद करूं, तो अल्लाह ताला कहेंगे तू झूठ बोलता है। फिर अगली बात इससे ये भी पता चलती है कि कोई इंसान कितना ही ज़्यादा मशहूर और नेक और लोगों की नज़रों में बड़ा ना बन जाए, अल्लाह ताला को उसको झूठा कहते हुए कुछ भी यार नहीं आती। हमारे यहाँ अमूमन ये कह दिया जाता है कि फलां उसका तो अल्लाह ताला का उस पर नौज़ुबिल्लाह, शायद उसका अल्लाह पे बड़ा ज़ोर चलता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें इस हदीस से हमें समझ आती हैं। फिर दूसरी बात इससे एक और पता चलती है कि इल्म सीखने के बाद भी लोगों की नीयतें बदल जाती हैं। इल्म सिखाते हुए भी नीयत बदल सकती है, क्योंकि यहाँ बात आलिम की है, इल्म सीखा और सिखाया, इसलिए इन दोनों में अपने आप को चेक करना चाहिए। फिर इससे ये भी पता चलता है कि बाज़ इल्म सीखने और सिखाने वाले भी अल्लाह की नज़रों में झूठे होते हैं। ये कौन होते हैं? जो अपने सीखे और सिखाए पर अमल नहीं करते और जिनकी नीयतों में खोट होता है। बज़ाहर वो इल्म सिखा रहे होते हैं, लेकिन असल में वो किसी और को प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर अगली चीज़ इससे पता चलती है, क़ारी कुरान, हाफिज़ क़ारी, जो दिन रात कितना ही कुरान क्यों ना पढ़ लें, लेकिन अगर उनकी नीयतें ख़राब होंगी तो कल क़यामत के दिन उनको भी पूछा जाएगा। फिर इसी तरह माल खर्च करने वाले, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो दिन लोगों को आश्कार करने का दिन है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारी नीयतों को बेहतर रखे और हर लम्हे इस पे नज़र रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए इस काम को आसान कर दे। शऊर के साथ ये दुआ मांगनी शुरू कर दें कि अल्लाह मेरी नीयत को दुरुस्त रखना। चलिए जी, यहाँ पे रुकते हैं।